प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं थोड़े से एक अलग ही विषय पर बात करने जा रहा हूं और वह विषय है कि जहां हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, मैं रह रहा हूं, हर कोई रह रहा है, कहीं ना कहीं रह रहा है और जहां हम रह रहे हैं उसका एक वातावरण है ना, एटमॉस्फियर है, परिस्थितियां हैं। आप देखिए कि आप अपनी नजर घुमाइए, आपके चारों तरफ लोग दिखाई देंगे, पेड़ पौधे, आसमान, तारे, दीवालें जो भी हैं दिखाई देंगी। तो ऐसा हम कहते हैं कि यह हमारा वातावरण है और हम इस वातावरण में रह रहे हैं। ये वो वातावरण है जो हम सबको दिखाई दे रहा और सच भी है कि जो हमें दिखाई देगा उसमें तो हम रह ही रहे हैं, उसमें गलत क्या है। हम अगर कह रहे हैं कि भाई हम इस वातावरण में रह रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हैं। सामान्य तौर पर तो हर कोई यही कहता है और दूसरा विश्वास भी करता है और विश्वास किया भी जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी अलग बात इस मायने में कर रहा हूं कि ये तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन एक ऐसा वातावरण भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसा वातावरण, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दो ऐसे वातावरण हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और ये जो दिखाई देने वाला वातावरण है इसकी तुलना में ये जो न दिखाई देने वाला वातावरण है कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण है। बल्कि कभी कभी तो मुझे ये लगने लगता है कि जो वातावरण दिखाई नहीं दे रहा है वही निर्धारित करता है उस वातावरण को जो दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बात शायद थोड़ी सी उलझन वाली हो गई। मैं कहना यह चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वही दिखाई देने वाले का निर्माण करती है। तो चलिए, जो दिखाई दे रहा है वो तो आपको मालूम है, वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं अब उन दो वातावरण की बात कर रहा हूं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्रों एक है हमारे विचारों से उत्पन्न जो किरणें होती हैं उससे निर्मित वातावरण। पता नहीं आप इसको महसूस करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये बता सकता हूं कि मैं इसे बहुत अधिक महसूस करता हूं, चाहे वह स्थान हो चाहे वह व्यक्ति हो। जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं या उस व्यक्ति से मिलता हूं, मैं एक ही जगह, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूं तो मेरा जो भौतिक वातावरण है, कमरा तो बिल्कुल वही का वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन जब लोग आ करके अगर मिल रहे हैं तो बकायदे मुझे महसूस हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे महसूस होता है, ठीक है ये एक अलग तरह का विषय है, उस पर हम लोग यहां नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे तो मेरे चारों तरफ एक अलग किस्म के वातावरण का निर्माण होने लगता है और मैं उस वातावरण को महसूस करता हूं और वो बदलता रहता है, वो वही नहीं रहता। भौतिक वातावरण तो बिल्कुल वही है, दीवारें नहीं बदलेंगी, अलमारियां नहीं बदलेंगी, जिस पर मैं बैठा हुआ कुर्सी नहीं बदलेगी, धरातल वही बना रहेगा लेकिन वातावरण बदलता रहता है। ये क्या है? तो मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति आ रहा है वो अपने साथ एक वातावरण लेकर आ रहा है, चाहे उसका वह वातावरण उसके अपने विचारों की किरणों से निर्मित वातावरण हो या उसकी भावनाओं से निर्मित वातावरण हो या उसके कर्मों से निर्मित वातावरण हो, लेकिन वह एक वातावरण अपने अंदर समाये हुए है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सामने वाला उसे महसूस करता है, दूसरा उसे महसूस करता है। अब चूंकि जिसका ये वातावरण ही है वो तो लगातार उसी में रह रहा है तो हो सकता है कि वो उसे अलग से महसूस न करे। जैसे मान लीजिए कि किसी का घर बगीचे के बीच में है तो बगीचे में तो बहुत अधिक सुगंध आ रही है लेकिन वो तो रोज रह रहा है तो उसके लिए वो सुगंध सामान्य सी बात होगी। आप और हम जब जाएंगे, जैसे ही एंटर करेंगे, अरे यार क्या खूबसूरत गंध आ रही, क्या सुगंध आ रही है, वो पूछेगा भैया कहां कौन सी सुगंध आ रही है, तो वो उस सुगंध को महसूस नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसमें रह रहा है। ठीक इसी तरह से दुर्गंध की स्थिति है कि जिसके घर के सामने से बिलबिलाती हुई नालियां बह रही है चौड़ी, उसको उसकी दुर्गंध नहीं आ रही है, उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब थोड़ी देर के लिए भी गुजरता है तो पता लगा कि नाक पर रुमाल रखा हुआ है कि यार ये तो कितनी दुर्गंध आ रही है। तो जो वातावरण व्यक्ति लेकर आया हुआ है उसको हो सकता है एहसास न हो लेकिन अगर आपका रिसीवर यानी कि उसको रिसीव करने वाला उसका जो वातावरण है, उसके जो किरणें निकल रही हैं, उन किरणों को रिसीव करने वाला भी तो चाहिए ना। तो अगर वो आपका रिसीवर ठीक ठाक है, अच्छा है, तो वह उसे महसूस करता है, सामने वाला महसूस करता है। तो मित्रों, इस तरीके से देखिए दो वातावरण हो गए, एक दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला, और जो नई दिखाई जो दिखाई नहीं देता है वो दो तरह की चीजों से बनता है। पहला विचार, हमारे विचार जैसे होंगे, मान करके चलिए कि हमारे आसपास उन विचारों के अनुकूल निकली हुई किरणों का एक वातावरण बन जाएगा। देखिए, हम अंधेरे में भी रह सकते हैं, हम डीम लाइट में भी रह सकते हैं, हम तेज प्रकाश में भी रह सकते हैं, ये सब प्रकाश के ही तो रूप हैं। हम पीली लाइट में रह सकते हैं, नीली लाइट में रह सकते हैं, ट्यूब लाइट की रोशनी में रह सकते हैं, ये अलग अलग तरह के ही प्रकाश हैं, काले, लाल, नीले, हरे, ये सब प्रकाश हैं। और इस तरह के प्रकाश हमारे विचारों से लगातार निकलते रहते हैं, ये साइंटिफिक है, यहां मैं कोई आपको कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी जो बात है मित्रों, वो थोड़ी सी नई सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अविश्वास करने का मन भी नहीं करता, और वो ये है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण बेसिकली हमारे कर्मों से निर्मित वातावरण है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसी तरह का वातावरण हमारे चारों तरफ निर्मित हो गया है और हम उसी में रह रहे हैं। देखिए, भौतिक वातावरण तो बन गया, और इस भौतिक वातावरण को बनाने में हमारे कर्मों का योगदान रहा है। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, कर्म का मतलब यहां काम से, भाग्य से नहीं है, काम से है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले एक विचार दिमाग में आएगा, तो विचार, जिस तरह का विचार दिमाग में आ गया है उस तरह का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा, उससे उस तरह की किरणें निकलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा यह कि जिस तरह का हम काम करेंगे उसी तरह के लोगों के बीच रहेंगे, उसी तरह के लोग आपसे मिलने जुलने के लिए आएंगे। जैसे कि अगर पंडित जी मंदिर में बैठे हुए, पुजारी मंदिर में बैठे हैं, तो उनसे मिलने के लिए कौन आएगा? कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी हो, लेकिन वहां तो आने के बाद जैसे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है सबकी पहचान एक हो जाती है, और वो होता है भक्त। भक्त आ गया, वो चाहे सेठ हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो, मंदिर की सीढ़ियों पर सभी भक्त होते हैं, और भगवान के सामने सभी भिखारी होते हैं, सीधी सी बात है। तो पुजारी के से मिलने भक्त लोग आएंगे, दुकानदार से मिलने ग्राहक आएगा, डॉक्टर से मिलने मरीज आएंगे, टीचर्स से मिलने स्टूडेंट आएंगे। तो मेरे जैसे कर्म हैं वैसे ही लोग तो मुझसे मिलने के लिए आएंगे, और जब ये लोग आएंगे तो जैसे ये लोग होंगे उसी तरह का वहां वातावरण बनेगा, सीधी सी बात है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरा जो काम है, मेरे जो कर्म है, उस कर्म के अनुकूल मेरे चारों तरफ एक वातावरण तैयार होता चला जा रहा है, और इस वातावरण को मैं महसूस कर रहा हूं। और याद रखिए कि महसूस करने का मतलब यह नहीं कि उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुझ पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि मेरी अपनी जो निर्मिति है, यानी कि मेरा अपना जो निर्माण है, उस निर्माण में कहीं ना कहीं इस वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका कंट्रीब्यूशन है। मुझे इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि नहीं, मैं जैसा बनना चाहूंगा मैं वैसा बन जाऊंगा, चाहे मेरे खिलाफ जैसा भी कितना भी बुरा वातावरण क्यों ना हो। नो डाउट कि व्यक्ति में संघर्ष करने की आत्मिक शक्ति होती है, आंतरिक क्षमता होती है, वह उससे जूझ सकता है, जूझ कर वह उससे जीत भी सकता है, और लोगों ने ऐसा किया भी है। लेकिन मित्रों, यहां दो चीजें होती हैं। पहला तो यह होता है कि हम अपवाद को ही नियम मान लें, दूसरा यह होता है कि अपवाद को अपवाद रहने दे, कि भैया ये कुछ लोगों के साथ तो होता है लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है, तो इसको छोड़ो, जो सबके साथ होता है हम उसको लेकर चलते हैं। और सबके साथ क्या होता है? सबके साथ ये होता है कि व्यक्ति अपने वातावरण की निर्मिति होता है, जिस तरह के वो वातावरण में रहता है उसी तरह का निर्माण उसका होता चला जाता है। तो मित्रों, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसे बताने की जरूरत नहीं समझता हूं। आपको जैसा अपना निर्माण करना है आप उस तरह का वातावरण अपने चारों तरफ निर्मित कर लीजिए, वह आपके निर्माण में, उसी तरह के निर्माण में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। आप इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।